हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रणविजय ने तुरंत दादी को शांत करने की कोशिश की और बोला, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं उसका कोई ठोस बैकग्राउंड भी नहीं है। बिना सबूत के हम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? और अगर वाकई वो इस तरह वहां आई है तो मैं जानता हूं कि वो सब दिखावा उसने जानबूझकर हमें डराने के लिए किया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, इसके पीछे जरूर हमारा कोई ना कोई दुश्मन उससे मिला हुआ है। वो अकेले इतना सब नहीं कर सकती। इतने हाई प्रोफाइल बॉडीगार्ड्स रखना उसके बस की बात नहीं थी। आप तो अच्छी तरह जानती हैं, ढाबे पर खाना खाने के लिए भी उसने 1800 रुपये आर्यन से उधार लिए थे। भूल गई क्या? जैसे ही रणविजय ने ये बात कही, दादी तुरंत ही हल्की सी घमंड भरी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, हम जानते हैं कि हमारे सामने उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन बेटा, दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। वो लड़की गिवअप करने वालों में से नहीं है। जिस वक्त हमने उसे सिद्धार्थ का बच्चा पैदा करने पर मजबूर किया था, उस वक्त उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी मनमानी की और सिद्धार्थ का बच्चा गिरा दिया था। तुमने नहीं देखा था? बच्चा गिराने के बाद उसकी खुद की जान पर बनाई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए भी डर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। वो सिद्धार्थ को ये दिखाना चाहती थी कि जो वो ठान लेती है वो करके रहती है। दादी की आवाज़ और सख्त हो गई। हमारी परेशानी ये नहीं है कि किसी ने उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। हमारी असली परेशानी है उसका एटीट्यूड, उसकी हिम्मत। उसमें बहुत हिम्मत है और अपनी उसी हिम्मत के दम पर वो कुछ भी कर सकती है। दादी की बातें सुनकर रणविजय भी एक पल के लिए घबरा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपने चालाक दिमाग और मक्कारी पर पूरा भरोसा था। वो बोला, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दादी। अगर मुझे लगा कि वो लड़की खुराना परिवार के लिए किसी भी तरह का खतरा बन चुकी है तो मैं खुद अपने हाथों से उसका अंत कर दूंगा। हालांकि उसने दादी को पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया था। इसके बाद रणविजय खुद गहरे सोच में डूब गया। आखिर मामला क्या है? अभी तक झलक का कोई पता क्यों नहीं चल पाया? वो सड़क से इस तरह कैसे गायब हो सकती है? क्या वाकई किसी पॉलिटिकल लीडर में इतनी हिम्मत है कि खुराना परिवार से टकरा सके? खुराना परिवार की उस शहर में अलग ही प्रतिष्ठा थी, ऊपर से सिद्धार्थ खुराना का दबदबा, जिसका नाम ही लोगों के लिए काफी था। रणविजय जितना सोचता उतना ही उलझता जा रहा था, और सबसे बड़ी बात, उसे हर हाल में झलक को ढूंढना ही होगा, क्योंकि ऑक्शन के बाद वो आकांक्षा और सिद्धार्थ की शादी करवा देना चाहता था। वो दांत भींचते हुए बुदबुदाया, आखिर कहाँ हो तुम झलक? वहीं दूसरी ओर झलक सुबह आराम से उठी। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सीधा दादाजी के पास जाकर बैठ गई। दादाजी ने उसे देखते हुए पूछा, तैयारी हो गई बेटा? झलक ने हल्के से पलके झपकाई ही थीं कि अनामिका उसके पास आकर बोली, मैं भी तुम्हारे साथ ऑक्शन में चलूंगी। ये सुनकर झलक ने उसे सख्ती से मना करते हुए कहा, नहीं, वे लोग इस वक्त पहले ही जख्मी हो चुके हैं। सिर्फ मेरे जाने भर से ही वे बौखला गए हैं। अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, और मैं तुम्हें जरा सी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। ये सुनते ही अनामिका की आंखें भर आईं। उसने भावुक होकर झलक को गले लगा लिया और कहा, जब तुम मेरी इतनी परवाह करती हो तो क्या मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होगी? आखिर तुम मेरी बहन हो, मैं सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकती हूँ? नहीं झलक, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। झलक ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन जब मैं कहूंगी तभी आगे आओगी, और वैसे भी अभी मुझे पहले ये प्रोजेक्ट खत्म करना है। 3 दिनों के अंदर सारी डेट्स फाइनल हो जाएंगी और काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरी तरह फ्री रहूंगी। नेशनल ऑक्शन में अभी पूरे 6 दिन बाकी हैं, 3 दिन प्रोजेक्ट के और अगले 3 दिन मैं सिर्फ ऑक्शन की तैयारी करूंगी। झलक ने ये बात गहराई से सोचते हुए कही, क्योंकि उसका इरादा सिर्फ ऑक्शन जीतना नहीं था बल्कि ओबेरॉय इंडस्ट्रीज पर भी अपना हक जताना था। वो जल्दी ही दादाजी और आरव मल्होत्रा को अपने प्लान के बारे में समझाने लगी। थोड़ी दूरी पर खड़े सौरभ जी ये सब देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर झलक के दिमाग में चल क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर आदित्य राणा और झलक फिर से अपने काम में जुटने वाले थे, क्योंकि 3 दिन के अंदर उनका ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। दोनों ही इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, और पूरा पूरा दिन वे लोग उसी काम में लगे रहते थे, बल्कि वे लगातार 2 से 3 दिन तक पूरी तरह रिस्पॉन्ड करते रहते थे ताकि किसी भी चीज़ की जरा सी भी कमी न रह जाए। जैसे ही सारी चीज़ें पूरी तरह फाइनलाइज हो जाती तब इसी तरीके से वे लोग अपने अपने दूसरे कामों पर भी ध्यान दे सकते थे। ऑफिस का सारा काम झलक ने, क्योंकि शालिनी काफ़ी ज़्यादा अनुभवी थी, उसी के भरोसे छोड़ दिया था। शालिनी बेमन से अब सारा काम कर रही थी, सारी मीटिंग्स अटेंड कर रही थी। हालांकि पहले तो वो मल्होत्रा परिवार की वारिस और ओनर बनकर ही सारे काम किया करती थी, लेकिन अब जब से उसे पता चला था कि असल में मल्होत्रा परिवार के नए वारिस जन्म ले चुके हैं और सबके सामने भी आ चुके हैं, तब से उसने काफ़ी ज़्यादा दिल छोटा कर लिया था और काम में पहले जैसा ध्यान नहीं दे पा रही थी। लेकिन झलक लैपटॉप के जरिए ऑफिस के हर काम से जुड़ी रहती थी ताकि किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए।
फिलहाल उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था उसका ड्रीम प्रोजेक्ट। वो जल्दी ही तैयार होकर बाहर आ गई थी और आदित्य गाड़ी में पहले से ही मौजूद उसका इंतजार कर रहा था। झलक ने आदित्य से कहा भी था कि वो खुद अपनी गाड़ी से वहां आ जाएगी, लेकिन आदित्य ने साफ कह दिया कि अब इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, आप और मैं दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, तो हमें साथ ही चलना चाहिए। झलक ने भी इस बात पर ज्यादा बहस नहीं की और वो उसके साथ चली गई थी। वहीं दादाजी झलक और आदित्य को साथ जाते हुए देख चुके थे और मन ही मन बोले थे, काश हमारी बेटी को ही आदित्य राणा पसंद आ जाए। तब अनामिचा हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली थी, या फिर कहिए दादाजी, दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है, मुझे पूरी उम्मीद है मोहब्बत भी जरूर जन्म लेगी। ये सुनकर दादाजी चौंकते हुए बोले थे, दोस्ती की शुरुआत हो गई, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? उसी वक्त अनामिका की आंखों के सामने रात 2 बजे का वो दृश्य घूम गया था जब झलक के कमरे से किसी से बात करने की आवाज आ रही थी और उसने बातों से अंदाजा लगा लिया था कि सामने कौन होगा। मगर अनामिका ने दादाजी से कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए बात टाल दी और बोली, अच्छा दादाजी, झलक तो शाम तक ही आएगी और मैं पूरा दिन बोर नहीं होना चाहती, क्यों ना आज हम राणा हाउस चलें, आप अपने दोस्त बलवीर जी से मिल लीजिएगा और मैं वहां थोड़ी देर घूम फिर लूंगी। कहीं ना कहीं इस वक्त अनामिका का मूड मस्ती करने का था और कबीर को चिढ़ाने में उसे एक अलग ही लेवल का सुकून और मजा आता था। उसने सोचा, क्यों ना जाकर कबीर की थोड़ी बहुत टांग खींची जाए। अनामिका की बात सुनकर दादाजी बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा याद दिलाया, चलो फटाफट से तैयार हो जाओ, हम लोग वहां के लिए निकलते हैं। तभी आरव जी ने दादाजी की ओर देखते हुए कहा, आप लोग वहां हो आइए, जो काम झलक ने मुझे दिया है तब तक मैं वो काम पूरा कर लेता हूँ। ये सुनकर दादाजी ने रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और फिर अनामिका को लेकर वहां से चले गए।
वहीं आरव जी जल्दी ही अपने कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स में पूरी तरह खो गए थे। सारी चीजों को अच्छी तरह चेक करने के बाद वे कम से कम 2.5-3 घंटे लगातार एक ही फाइल पर काम करते रहे। जब उन्हें इस बात का संतोष हो गया कि उनकी बेटी झलक का दिया हुआ काम पूरी तरह पूरा हो चुका है, तब जाकर उन्होंने गहरी सांस ली और खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगे। फिर तिरछी मुस्कान के साथ बुदबुदाए, बहुत शौक है ना तुम लोगों को हमें पहले झटका दिलाने का, अब देखता हूँ इस बार कैसे बचती हो तुम हमारे वार से। ये कहते हुए आरव जी का चेहरा बेहद डरावना हो गया था। दूसरी ओर झलक ने पूरे रास्ते आदित्य से एक बार भी बात नहीं की थी। आदित्य मन ही मन बुदबुदा रहा था और सोच रहा था, रात 2 बजे तो दोस्ती दोस्ती खेल रही थी और अब साथ में बैठी है तो क्या नॉर्मल तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकती? 1 घंटे का सफर भी ऐसा लग रहा है जैसे सदियां बीत गई हों। तभी आदित्य ने बात की शुरुआत करते हुए कहा, अच्छा झलक जी, एक बात बताइए, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है? आपकी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन क्या है? आदित्य का सवाल सुनते ही झलक की आंखों के सामने अपने गांव का एक छोटा सा स्कूल घूम गया, जहां वो बेपरवाही से घूमा करती थी। किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी, कितनी हसीन जिंदगी गुजरा करती थी उसकी। एक पल को उसका दिल हुआ कि सब कुछ सच सच बता दे, अपने स्कूल, कॉलेज और बीते दिनों की सारी बातें। लेकिन अगले ही पल उसने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया और बिना किसी हिचक के बोली, मुझे फालतू सवाल पसंद नहीं है मिस्टर राणा। ये सुनकर आदित्य अंदर ही अंदर झुंझला गया और सोच रहा था, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ लिया तो ये सवाल भी फालतू लग रहा है, आखिर समझ क्या रही है अपने आप को। फिलहाल वे लोग अपनी साइट पर एक बार फिर पहुंच चुके थे। वहां जाकर आदित्य ने ध्यान से और पूरी तसल्ली के साथ सारा काम चेक करना शुरू कर दिया।